नमस्कार भारत, नए साल 2018 की पहली तारीख दिन सोमवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। दुनिया भर में जश्न के साथ हुआ नए साल का स्वागत, नौजवानों की टोली निकली सड़कों पर।
पहले हम इंडिया गेट जाने वाले थे, हम वहाँ पे केक काटने वाले थे, बट क्या हुआ वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है और उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम सिर्फ इंडिया गेट को बाहर से देख के हाय करके आ गए हैं।
मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने की अल्पसंख्यकों की बात और करेंगे चर्चा रजनीकांत और उनकी राजनीति की।
कि जो फैन फॉलोइंग है वो तो है ही, और आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। नए साल के मद्देनजर पेरिस, लंदन और बर्लिन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर दुबई में लोगों ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेजर शो का आनंद उठाया। कोस्टा रिका में हुए एक विमान हादसे में 12 लोग मारे गए हैं। सरकार का कहना है कि एक छोटा विमान था जिसमें 10 विदेशी नागरिक सवार थे। मरने वालों में केबिन क्रू के 2 सदस्य भी शामिल हैं। ये विमान गुआनेकास्ता प्रांत में पर्यटकों की भीड़ वाली जगह से कुछ दूरी पर गिरा है। सरकार के प्रवक्ता ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। इन तस्वीरों में विमान जलता हुआ दिखाई दे रहा है। विमान में सवार कोई यात्री हादसे में नहीं बच पाया है। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क के लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, बशर्ते सार्वजनिक संपत्ति को इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रूहानी ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला की सरकार ने नए साल में न्यूनतम मजदूरी को 40% तक बढ़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो आर्थिक युद्ध छेड़ा हुआ है, इसके खिलाफ इस कदम से देश में कामगारों के हितों की रक्षा होगी।
Anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional.
मैं राष्ट्रीय न्यूनतम पगार में 40% इजाफा करने का ऐलान करता हूँ। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर पर शिक्षकों, पुलिस, डॉक्टर और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी फायदा मिलेगा। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि साल 2018 में चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका अदा करेगा। नए साल पर दिए भाषण में जिनपिंग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दुनिया की निगाहें चीन की तरफ हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को बनाए रखेगा और जलवायु परिवर्तन के मसले पर अपने वादों को निभाएगा। जिनपिंग ने कहा है कि मानवता को मदद करने के लिए चीन अपना योगदान देगा। मानवता की शांति और विकास के संदर्भ में उम्मीदें और चिंताएं दोनों ही हैं। सभी पक्ष चीन का स्पष्ट रुख चाहते हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते चीन अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चीन के जो कर्तव्य हैं उसे सक्रियता के साथ पूरा करेंगे। ये थे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। सऊदी अरब की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने कहा है कि 1 जनवरी से पेट्रोल की स्थानीय कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। लोगों को अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 54 अमरीकी सेंट तक चुकाने पड़ेंगे। हालांकि डीजल के दामों में वृद्धि नहीं की गई है। असम की सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद अवैध रूप से असम में रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों को वापस भेजना है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस कदम को गैर हिंदुओं को राज्यविहीन बनाने की कोशिश बताया है। 2016 में सत्ता में आए बीजेपी ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कदम उठाने का वादा किया था। सरकार का कहना है कि इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो राज्य में रहने का दावा कर सकते हैं। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों ने कहा है कि सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों के साथ हुई भिड़ंत में 8 लोग मारे गए हैं। इनमें 7 लोगों की जान राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के खिलाफ इस प्रदर्शन करने के दौरान सुरक्षा बलों की गोली लगने से हुई है। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति जोसेफ कबीला से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से अपना राजदूत वापस बुला रहे हैं। उनका कहना है कि राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुलाया जा रहा है। ये घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के ये कहने के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देता है। बीबीसी समाचार।
ये ये बीबीसी हिंदी सेवा है और नए साल में दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। जब दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग घड़ियों ने रात के 12 बजाए तो तारीख के साथ साथ साल भी बदल गया। आतिशबाजी से सराबोर चमकते आकाश के नीचे दुनिया भर में लोग जश्न मनाते नजर आए। ये अलग बात है कि जश्न की उस घड़ी में ईरान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा उबल रहा था जहां राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दे रहे थे। इस खबर पर हम आएंगे थोड़ी ही देर के बाद, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली में लोगों ने नए साल का जश्न किस तरह मनाया, उसकी एक झलक लेकर आए हैं विकास त्रिवेदी।
मैं दिल्ली के दिल जो कनॉट प्लेस माना जाता है वहां पे हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, 2018 आ चुका है। सड़कों पे जवान दिलों के जो नए उम्र के लोग हैं उनकी भीड़ है। लोग केक काट रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। हालांकि पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, यहाँ पे हर जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। गाड़ियां साइड में खड़ी, पर लोग कहाँ रुकने वाले हैं। लोग सेल्फी खींच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, भोपू बजा रहे हैं और नए साल का अपने अपने हिसाब से स्वागत कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं।
और इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नौजवान आए हुए हैं।
इस बार नया साल हम कुछ नए तरीके से मनाने के लिए सोचा है। हर बार हम घर पे हाउस पार्टी वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं, बट दिस न्यू ईयर बहुत सारी चीजें थी बीच में, सिक्योरिटीज इश्यू, बट स्टिल वी रिक्वेस्ट टू द CRPF गाय और उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। पहले हम इंडिया गेट जाने वाले थे, हम वहाँ पे केक काटने वाले थे, बट क्या हुआ वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है और उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम सिर्फ इंडिया गेट को बाहर से देख के हाई करके आ गए हैं और यहाँ फिर अब हम CP में आए हैं।
कितने बजे तक रुकने का आप लोगों ने सोचा है यहाँ पे?
2:30 बजे तक रुकने का सोचा है।
और घर वालों से क्या बोला है?
घर वालों से बिल्कुल सच बोला है। हम लोग घर से
हम सारे बनारस से, यूपी से हैं और हम यहाँ पे गुड़गांव में जॉब करते हैं।
कुछ यहाँ पंजाब से है, कुछ यहाँ पे बिहार से है, कुछ यहाँ पे इलाहाबाद से है, कुछ मेरठ से है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ जगह से लोग हैं, दोस्त हैं। हमारे घर पे बिल्कुल सच बोला है, हम झूठ बोल के नहीं कुछ करते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज दिल्ली में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े नए साल का, इसलिए पुलिस काफी है यहाँ पे, घोड़े से लेकर कार तक, सड़क से लेकर जो ऊपर चौकियां बनी रहती है वहां तक। आपके लिए नया साल कैसे मन रहा है?
सर बहुत अच्छा है और हमारे देश में एक ये खुशहाली भरा और बहुत ही जश्न भरा, ये आप देख सकते हैं आपके सामने कितने उमंग से बच्चे और युवा लोग उछल कूद के मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
पर आप घोड़े पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आपके लिए नया साल कैसा हो रहा है?
हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हमें ड्यूटी करना अच्छा पसंद है और जितनी ड्यूटी होगी उतनी पुलिस को, जितनी हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी जाए उसको अच्छी तरह हम निभा सकें।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम ईरान में भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह नए साल का जश्न नहीं बल्कि सरकार विरोधी प्रदर्शन है जो 4 दिन से जारी हैं। इस प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति रूहानी ने पहली बार बयान जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि तोड़फोड़ करके शांति भंग करने जैसी हरकतों को सरकार जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति रूहानी ने कहा, अरब के कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान के दोस्त कभी नहीं रहे, आजकल ये देश बहुत खुश हैं, हमें सावधान रहना होगा इनसे, एक राष्ट्रीय सुरक्षा ही तो है जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इस बयान की पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं। इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे सारी दुनिया देख रही है। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने अपने बयान में ट्रंप के इस बयान का भी जवाब दिया है।
इन آقایی که امروز در آمریکا میخواد با مردم ما همدردی بکنه یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را
امریکا میں یہ جو سجن ہیں جو آج کل ہمارے دیش کے ساتھ سہانوبھوتی جتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کئی مہینے پہلے انہوں نے ہی ایران کو چرمپنتھی دیش کہا تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ آدمی سر سے لے کر پیر تک ایران کا دشمن ہے। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द हैं ये। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के लोगों को विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन हिंसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति रूहानी ने यह भी कहा कि ईरान आज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जिम्मेदार हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप, संदीप सोनी के साथ। कल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों का जिक्र किया। उन्होंने हज यात्रा और मुसलमान महिलाओं की सहूलियत की बात की।
हमारी जानकारी में एक बात आई कि यदि कोई मुस्लिम महिला हज यात्रा के लिए जाना चाहती है तो वह महरम या अपने मेल गार्डियन के बिना नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि कई इस्लामी देशों में भी यह नियम नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ये 70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट करके इस रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया।
मन की बात में ईसाइयों का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
अभी पिछले दिनों 25 दिसंबर को विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। भारत में भी लोगों ने काफी उत्साह से इस त्यौहार को मनाया। क्रिसमस के अवसर पर हम सब ईसा मसीह की महान शिक्षाओं को याद करते हैं और ईसा मसीह ने सबसे ज्यादा जिस बात पर बल दिया था वह था सेवा भाव।
मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए अपनी जो चिंता जताई है उसमें कितनी गंभीरता है, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रवक्ता जॉन दयाल से बात की।
अपनी जेब मिटाने के लिए है। इन साहब ने पहले तो बड़ा दिन मानने से मना कर दिया था, उसको गुड गवर्नेंस डे कह दिया था। इनकी आवाज सुन के इनके अनुयायियों ने पिछले 3 साल से तो कर ही रहे थे, मगर इस साल तक बड़े दिन के आने से पहले ही जो उनका घृणा था चरम सीमा पे पहुंच गया था। देखिए, मुस्लिमों के साथ जो हुआ तो हुआ, उसमें तो सैकड़ों केस हैं, लिंचिंग के तो बहुत ही केस हैं। ईसाइयों के ऊपर हमारी संस्था ने 270-280 के करीब केसेस वो दायर किए हैं जिन्होंने हेल्पलाइन पर हमको कंप्लेंट की और हमने पुलिस वालों से बात की। बाकी जिन्होंने डायरेक्ट पुलिस वालों से बात की उनके केस नहीं लिखे गए, जो गाँव में थे उनका हम जानते ही नहीं है। सतना का कांड है, वहां पर एक फादर और उनके 30 स्टूडेंट्स गाना गा रहे शाम को, हम लोग उसको कैरल सिंगिंग कहते हैं, पूरे विश्व में होता है। वहां पे वो कैरल सिंगिंग कर रहे थे, उन पर घातक अटैक हुआ, उनकी गाड़ियां जला दी गई। ये झूठ प्रयोग कर करके जिस तरीके से जो घृणा है, मुझे मानना पड़ेगा कि अगर आप घृणा किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ फैलाते हैं, कहते हैं वो पोप के अनुयायी हैं, सोनिया गांधी से उनका संबंध है, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस तरीके की जब घृणा फैलाएंगे तो गांव शहर छोटे शहरों में तो कहेंगे कि सब उनको इनको हटाओ, तो कहेंगे तो सरकार ने हमको खुली छूट दे रखी है। तो जब सही है भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो जो मिलता है उसकी पिटाई करो।
प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में अल्पसंख्यकों के जिक्र पर यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रवक्ता जॉन दयाल के शब्द।
मैं हूँ एबी सीनियर पहने हुए थे अमरीश पुरी, ओए कबाली, ऐसे बुलाते ही सर झुका कर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है, ऐसा कबाली समझा है क्या?
कबाली है ये।
मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
बिल्कुल सही पहचाना आपने इस आवाज को। ये हैं जाने माने अभिनेता रजनीकांत। कल चेन्नई में रजनीकांत ने कहा कि तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे।
ना எல்லாரியோ ஏற்கனவே முடிச்சிட்ட நீ அம்பு விடுறதா பாக்கி அவ நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி।
दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने की घोषणा तो कर दी, लेकिन राजनीति में उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन के सामने यही सवाल रखा।
अगर वो राजनीति में आ जाते हैं, अब मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो उनको राजनीति में आना पड़ेगा। अब राजनीति में आने के बाद क्या उनको वही सफलता मिलती है जो सिर्फ दो सिनेमा एक्ट्रेस को मिली है तमिलनाडु में वो है MGR साहब एक तरफ और दूसरी तरफ है जयललिता जी। देखिए उनका जो वोट बैंक या पॉपुलैरिटी है वो कुछ ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, पर उनकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है चीफ मिनिस्टर बन के राज्य को चलाने में। पर उन्होंने वायदा तो अपने लोगों को और अपने जितने भी साथियां हैं ये तो की जरूर किया है कि वो राजनीति में आएंगे, पर उन्होंने कोई फिक्स्ड साइन नहीं दिया है कि कब तक ये कायम करेंगे। तो इसीलिए उनके अपने ही सपोर्टर्स हैं उनमें कुछ थोड़ी सी आशंकाएं हैं कि ये कब तक तय होगा, क्योंकि इस पे अगर आप कोई जल्दबाजी ना ही करें पर कुछ डिसीजन तो लें ताकि उसके बाद पता चले कि आगे क्या रणनीति रहेगी कैसे वो आगे बढ़ेंगे। पर उन्होंने एक चीज ये भी कहा है कि वो मैनिफेस्टो अपना बनाएंगे उसको सामने रखेंगे और 3 साल तक अगर उसकी पूर्ति ना हो तो वो पॉलिटिक्स छोड़ के वापस जो भी कर रहे हैं उस पर वापस चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ इसमें प्रश्न चिन्ह इतना ज्यादा है कि इससे फर्मली कुछ कहना इस वक्त मुमकिन नहीं होगा।
तमिल फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, उन फैंस के वोट बैंक को हटा दिया जाए तो क्या आप इनका कुछ कोई अलग वोट बैंक देख पाते हैं रजनीकांत का?
उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो तो है ही, और आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, क्योंकि जो दो द्रमुख द्रविडियन पार्टीज हैं उनको लोग पिछले 35-40 साल से झेल रहे हैं और उनसे कुछ खास चीज उभर के बाहर नहीं निकली है। मेरे ख्याल में ये पहला अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में आऊंगा। अगर ये रियली आ गए तो मेरे ख्याल में इनकी जीत तो होगी होगी, मुझे नहीं लगता कि इनको लोग नकारेंगे। और उन्होंने ये भी बात की है कि अगर 3 साल तक मैं अपने वायदे नहीं पूरे कर पाऊंगा तो मैं फिर इस्तीफा देके निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे है जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ पर है।
अब तक क्यों हिचक रहे थे आने में, और क्या कमल हसन भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?
कमल हासन ने एक बात आज बहुत स्पष्ट कर दी है, उन्होंने ये कहा है कि इनको तो उन्होंने बधाई दी है कि रजनीकांत जी फाइनली एक डिसीजन लेके उभर के आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इनका साथ दूंगा। अब रजनीकांत जी उभर के आएंगे तो अगर उनको साथ मिलेगा तो और भी अच्छा होगा। पर देखिए एक अनसर्टेनिटी उभर के खड़ी हो गई है कि 20 साल से अगर कोई एक साहब जिनको लोग चाहते थे कि वो राजनीति में उभर के आए नहीं आए और अब कह रहे हैं सडनली कि मैं आऊंगा, कितने हद तक इन पे भरोसा किया जाए, ये है प्रश्न चिन्ह।
राजनीति में रजनीकांत की दावेदारी पर ये थे वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन। और आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां नए साल में। पहली जनवरी के अखबार क्या कह रहे हैं विकास?
संदीप, जो भी हमारी रजनीकांत की खबर चल रही थी, रिपोर्ट थी, उसी खबर को ज़्यादातर अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है कि नए साल में आएगी रजनी की पार्टी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी रजनीकांत की तस्वीर को छापा है और शीर्षक दिया है कि राजनीति में आए रजनीकांत, कहा कि सिस्टम को बदलने का वक्त आ गया है। तो अलग अलग अखबारों ने अलग अलग शीर्षक दिए हैं रजनीकांत से जुड़े हुए। इस खबर से अलग बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में सेना के 5 जवान जो मारे गए थे उसको सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अखबार में इसी हमले की तस्वीर को छापी जिसमें CRPF कैंप से आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप, कल PM नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर जो मन की बात की थी, ज़्यादातर अखबारों में मोदी की मन की बात के उस हिस्से को पहले पन्ने पर जगह दी गई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया था। दैनिक जागरण मोदी के बयान को शीर्षक बनाया है और लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं ने खोज लिया अपनी आज़ादी का रास्ता। अमर उजाला लिखता है कि अब मुस्लिम महिलाएँ अकेले हज पर जा सकेंगी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने मोदी की जो मन की बात में उन्होंने 18 साल के युवा वोटरों से नया इंडिया बनाने की जो अपील की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर का एंगल उसको रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की दूसरी खबर की बात करें तो BJP शासित राज्यों में जो बीते कुछ दिनों से किसानों से जुड़ी जो कुछ संकट चल रहे हैं उनकी मांगों को लेकर, उसमें अखबार लिखता है कि केंद्र और राज्य सरकार बजट से पहले फसल की कीमत को लेकर किसानों की मतलब समाधान करने की कोशिश कर रही है। और इसमें ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुछ वक्त पहले एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था भावांतर भुगतान योजना,
जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था।
जी जी, तो फिलहाल जो जिन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है उसमें ये योजना पहले नंबर पर है। इसके अलावा बात करें तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल बीते कुछ दिनों से वित्त मंत्रालय मिलने से नाराज चल रहे थे,
लेकिन अब उनकी नाराजगी
अमित शाह के दखल के बाद
नए साल में नाराजगी खत्म हो गई।
हाँ, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभाल लिया है।
बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी। लगता है आपको आपके हाथ में एक दो सुर्खियां और हैं।
जी मेरे पास अभी कुछ और,
जल्दी से बताइए।
असम की सरकार ने नए साल के मौके पर जो राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का जो पहला मसौदा जारी किया है उसके चलते तनाव की आशंका है और सेना को सतर्क पर रखा गया है, इसको भी कुछ अखबारों ने अपनी जगह दी है। और अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास कैश नहीं है तो अब रेलवे की स्कीम ला रही है कि 15 जनवरी से उनको एटीएम और डेबिट कार्ड से आप टिकट ले सकेंगे, जो टीटी होगा वो मशीन लेके घूमेगा।
चलिए विकास आप कोशिश करिएगा इस स्कीम में, ट्राई करके देखिएगा नए साल में। बहुत शुक्रिया विकास। बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियाँ। और अब इस साल की पहली पाकिस्तान डायरी कराची से वस्तुल्लाह खां की जुबानी।
25 दिसंबर को इस्लामाबाद में कुलभूषण की माता और पत्नी के साथ होने वाली खिलवाड़ और फिर उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स में पाकिस्तानी यात्रियों को वीज़ा ना देने के बारे में कुछ भी तो आश्चर्यजनक नहीं। ऐसी सरकारों और ऐसे लोगों के लिए मियां मोहम्मद बख्श ने 125 वर्ष पहले ही कह दिया था, नीचा दी अशनाई को लो फैज़ किसे ना पाया, किकरते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। कुछ समय पहले तक हम जैसे संता बनता समझते थे कि सरकार भले कैसी भी दूधों धुली हो मगर मीडिया वो आईना है जिसमें सरकार की बदसूरती साफ साफ नजर आ जाती है। पर अब दिन ब दिन ये बताना मुश्किल होता जा रहा है कि मीडिया और सरकार में ज्यादा बदसूरत कौन है। कोई सोच सकता था कि आईने को भी जंग लग सकता है, मगर लग गया। कल का मीडिया सरकारों की हाजिरी लगाता था, आज वो पत्रकार ही नहीं माना जाता जो सरकार का दम ना भरे या व्हाट्सएप पे आने वाली लाइन को साष्टांग दंडवत प्रणाम ना करे, ये साबित ना कर सके कि ज्यादा जहर में बुझी रिपोर्टिंग या टॉक शो कौन कर सकता है, बिलो दी बेल्ट प्रश्न कौन किस पे उछाल सकता है, दुम हिलाती भीड़ में सबसे ऊपर कौन चीख सकता है, सर मैं, मुझे देखें, मैं ये सब कर सकता हूं सर। भारत हो के पाकिस्तान, ऐसे कितने पत्रकार एंकर या लेखक बाकी हैं जो सरकारों की गुड बुक में रहने या रेटिंग का तमगा उचकने की पागल दौड़ में शामिल ना हो। जवाब चाहिए तो अपने हाथों पैरों की सब उंगलियां गिन लें और फिर भीड़ से अलग खड़े पत्रकारों और एंकरों के नाम पन्ने पे लिखते जाएं। रात से सुबह हो जाएगी 20 नाम पूरे करते करते। और जो हैं भी उन्हें इतनी हैरत से देखा जाता है जैसे न्यूड बीच पे कोई कपड़े पहन के आ निकला हो। इस माहौल के नतीजे में किसी की भी माँ बहन मेहमान कातिल मकतूल झूठ सच प्लांटेड सवाल आज़ादी और बदतमीजी के बीच की तमीज़ उठ जाना बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं बल्कि ये तो न्यू नॉर्मल है। पहले माँ ही तरबियत करती थी, आज टीवी और सोशल मीडिया माँ की सौतन है। बात सुनना आउटडेटेड, शट अप कॉल नया फैशन, गाली परंपरा, अफवाह नया नियम, तलवे चाट लो या चटवा लो नया कानून, घंटे भर की रेटिंग के लिए कुछ भी करेगा, करोड़ों लोगों के दिलों में जहर ना सही शक ही सही। अगर ये आज की सच्चाई नहीं तो फिर यूं करो कि इससे अलग कुछ कह या करके दिखा दो, वो भी गालियां खाए गायब हुए या कत्ल हुए बिना, तब जाने। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं ये भी ना कहूं कि अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, खुदा मेरे तमाम अंदाजे नए साल में गलत साबित करे, आमीन।
सोचने पर विवश करती वस्तुल्ला खान की इस डायरी के बाद अब बारी है खेल खिलाड़ी की।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का फाइनल इंदौर में दिल्ली और विदर्भ के बीच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन विदर्भ ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत करते हुए पहली पारी के आधार पर 233 रनों की बढ़त बना ली थी और अभी भी उसके 3 विकेट बाकी हैं। कल स्टंप के समय विदर्भ का स्कोर 4 विकेट खोकर 528 रन था। अक्षय वाडेकर 133 रन बनाकर नाबाद थे। वैसे सिद्धेश निराल भी नाबाद 56 रन बनाकर दिल्ली के गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए हैं। और अब समीक्षा, क्या इस भारतीय क्रिकेट टीम में दक्षिण अफ्रीका से पार पाने का दमखम है?
गुड साइड, गुड सीरीज एंड दिस इज अ साइड दैट कैन कम्पीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड वी विल लुक टू कम्पीट।
कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस विन एंड ऑल द बेस्ट फॉर साउथ अफ्रीका।
पिछले दिनों अपनी ही जमीन पर श्रीलंका से टेस्ट एक दिवसीय और 2020 क्रिकेट सीरीज जीतने के बाद भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री की आवाज में बेहद आत्मविश्वास था और भरोसा भी कि विराट कोहली की कप्तानी में खेलने वाली वर्तमान टीम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह किसी भी टीम से मुकाबला कर सकती है। और उनके दावों की पहली परीक्षा इसी सप्ताह से दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर खेले जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी, जिसका पहला मैच केप टाउन में शुक्रवार 5 तारीख से खेला जाएगा। भारत ने साल 2017 में 11 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 7 जीते और केवल 1 हारा, 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे और इकलौती हार भी मिली तो अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में, जहां पुणे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से हराया। हार का दर्द इतना था कि कप्तान विराट कोहली कह गए कि टीम इच्छा शक्ति की कमी से हारी।
दिल पे लगे वो हार, वो बहुत जरूरी होता है और ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस चीज से सीखें। जो टेस्ट मैच हारे हैं वो अपने लैक ऑफ इंटेंट की वजह से हारे और दूसरी टीम ने हमसे बेटर क्रिकेट खेला, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसका ये मतलब नहीं है कि हर टेस्ट मैच में ऐसा होगा। जो हम जानते हैं हमने वो परखा और उस चीज पे इम्प्रूव करेंगे, वैसा प्रदर्शन दोबारा देखने को नहीं मिलेगा।
खैर, ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार से सबक लेकर टीम आगे बढ़ी और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। हालांकि चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली की इच्छा शक्ति के कायल तो पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी भी हैं।
विराट कोहली की इंटेंसिटी अबाउट क्रिकेट अबाउट हिज टीम आई हैवंट सीन दैट इन एनी अदर इंडियन लिविंग टुडे।
लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आज टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की ताकत विराट कोहली के अलावा चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, रोहित शर्मा और गेंदबाजी में तुरुप के इक्के स्पिनर रविंद्र जडेजा, उनके जोड़ीदार आर अश्विन और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी हैं। तभी तो कभी तेज गेंदबाजी का डटकर सामना करने वाले वो भी विदेशी जमीन पर मोहिंदर अमरनाथ कहते हैं,
दम है टीम में, आत्मविश्वास है, भरोसा है और कुछ करने की चाहत है। दौरे की शुरुआत थोड़ी जरा मुश्किल होती है, बट अब जितनी जल्दी आप अडॉप्ट कर सके उसको उतना बेहतर। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये टीम जा रही है दौरे पे।
भारतीय टीम इससे पहले 5 बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर चुकी है, लेकिन कभी टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 7 हारे हैं और 4 ड्रॉ कराए और केवल 2 जीते हैं। ये आंकड़े क्या बदलकर पहली टेस्ट सीरीज जीत में दर्ज होंगे और रवि शास्त्री और पूरी टीम का भरोसा दावों पर कितना दमदार साबित होगा, जल्दी ही पता चल जाएगा। यादें भी बड़ी जालिम होती हैं, कभी खुशी देती हैं कभी गम। कुछ ऐसा ही है भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ, जिन्होंने पिछले साल पहले ही सप्ताह में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में महिला युगल वर्ग का खिताब अमेरिका की बेथानी मार्टिक सेंट्स के साथ मिलकर जीता था।
दिस वीक वाज वेरी स्पेशल बिकॉज़ आई वाज नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड व्हेन वी वन बेथानी वाज गोना बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड आई फील लाइक आई एम हैंडिंग ओवर मिस वर्ल्ड लाइक ट्रॉफी टू
लेकिन ठीक 1 साल बाद इन दिनों वो अब चोटिल होकर बाहर हैं। निराशा की वजह कुछ और भी है, पूर्व डेविस कप कोच नंदन बल कहते हैं।
उनका एक इंटरव्यू पढ़ा है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नहीं खेल रही है तो उनकी रैंकिंग बहुत ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर वो फाइनल्स में थी, तो वो सारे पॉइंट अगर निकल गए तो वापसी बहुत मुश्किल होती है।
तो साल की शुरुआत में ही भारतीय टेनिस प्रेमियों को लगा बड़ा झटका। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार, भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोस्टारिका में हुए एक विमान हादसे में 12 लोग मारे गए हैं। सरकार का कहना है कि एक छोटा विमान था जिसमें 10 विदेशी नागरिक सवार थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क के लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, बशर्ते सार्वजनिक संपत्ति को इसे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे विकास त्रिवेदी और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ा गुरप्रीत ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। अगला प्रसारण दिन भर, समय आप जानते हैं, भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।